समय के बाद अव्यक्त मूर्ति हम डिस्कस करेंगे। तो आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कौन कौन से समान दिए, यहाँ से चालू करते हैं। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कौन कौन से समान दिए? सदा सहयोगी, विशेष सहयोगी, राइट हैंड, आज्ञाकारी, हर कार्य में एवर रेडी, बाप दादा के डायरेक्शन पर चलने वाले, और मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, मास्टर भाग्य विदाता, मास्टर वरदाता बच्चे, और फायर प्रूफ बच्चे, अग्नि प्रूफ, और एक नामी और इकोनॉमी, सदा न्यारे और बाप के प्यारे या विशेषता वाले, और उड़ने वाले, उड़ाने वाले, महान बनने वाले, महान बनाने वाले, अनासक्त बच्चे, संतुष्ट, त्यागवान, महाभागी, महाभाग्यवान, अविनाशी भाग्यवान बच्चे, और नहीं बोली, और सिद्धि स्वरूप बच्चे, और सच्ची सच्ची गोपिकाएं, सच्चा सच्चा सौदा करने वाले, दो सौदे बोले हैं आज की मुरली में प्रभाकर भाई, कौन से दो सौदे?
एक तो वो और दूसरा वो,
एक तो वो कौन सा और दूसरा वो कौन सा?
जो प्रभाकर बताएगा।
कौन से दो है योगेंद्र भाई, कौन से दो सौदे? राजेश भाई, संतोष भाई, सुभाष भाई, शाहू भाई, अशोक भाई, कौन से दो सौदे हैं? कुमुद बहन, आज की मुरली में नहीं, आज की मुरली में मेरा तो सिरा तेरा नहीं है।
75% जो करना,
75% अपना जो है वो किसमें लगाते हैं? अलौकिक सेवा में लगाते हैं, इसमें भोला नहीं बनना। वो तो है, पर ये जो बात है समय के लिए नहीं है, ये बात धन के लिए है, धन के लिए। ये है एक सौदा जिसमें सारे साधन जुटा सकते हैं, सब कुछ है, परंतु फिर भी ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय जमा के खाते का जैसे राज वो जानते हैं, इसके लिए ये राज जानते हैं, इसके लिए 75%। वो दूसरा पॉइंट है, वो यहाँ नहीं है, वो विशाल बुद्धि है। ये पॉइंट है कि पहला सौदा तो ये है, सौदा कौन सा है सबसे पहला, कि धन 75% उधर लगा देते हैं और बाकी निमित्त मात्र अपने सेवा, अपने लौकिक कार्य में लगाते हैं। ये पहला सौदा। दूसरा सौदा किसने, जिसने भोला नहीं बनना है?
दूसरा सौदा है जो कमाया खाया है, या फिर जो तेरा भी मेरा ही।
वो तो विशेष, वो विशाल दिल है उनकी, वो गोपियों का उदाहरण है, गोपिकाओं का उदाहरण, वो उसी में है, वही पहला है कि जिसमें गोपिकाएं क्या करती है, अपना उधर तो हाफ पार्टनर है पर इधर फुल पार्टनर है। ये धन की है, ये धन के बारे में, ये पहला सौदा। दूसरा सौदा संबंध संपर्क ना, दूसरा कौन सा सौदा?
घाटे वाला कि फैले वाला?
ये जो त्याग की बात जो है ना, यही सौदा है, ये दूसरा सौदा है। इसमें भोला नहीं बनना है, जो भाग्य जो मिलता है फल उसको क्या कर दो, ये तो बांट दो या भोग लगा दो, भोग या बांटना, ये है दूसरा सौदा। तो ऐसे दो सौदे हैं। बांटना कैसा, उसकी चर्चा आगे। अभी हम सौदे वाले प्रश्न पर थे ही नहीं, हम समान वाले प्रश्न पर थे। तो और कौन से समान दिए आज बाबा ने? पूर्वज मुरली में नहीं है वैसे तो, परंतु चलो वैसे तो बहुत ले सकते हैं। और
सच्चे सच्चे पांडव,
गोपिकाएं, और समान मुरली के पूरे, आज्ञाकारी बोल दिया, डबल पाठधारी, डबल चांस लेने वाले, दो बार डबल है, डबल चांस कौन सा और किसके लिए कहा है?
शिक्षक, मास्टर शिक्षक,
टीचर्स के लिए कौन सा डबल चांस? एक तो स्वयं चांस लिया और दूसरों को बांटते हैं, ये एक दूसरा चांस, और
मास्टर शिक्षक
सच्चे सेवाधारी, और नहीं नहीं समान भाग हो गया, कौन सा?
बेफिक्र बादशाह,
बेफिक्र बादशाह, और आज की मुरली से समान। वरदान का इधर का बताओ, मुरली का, और बाप दादा के हम जीन्स, और हो गया बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माएं, ये लिफ्ट मिली है एक, बाद में बंधन मुक्त नहीं, सत्संगम सतयुग के जीवन मुक्ति नहीं, यहाँ की जीवन मुक्ति, वहां की मुक्ति नहीं, परम धाम की, संगम युग की मुक्ति और संगम युग की ही जीवन मुक्ति, यहाँ ही मुक्ति का अनुभव, यहाँ ही सर्व बंधनों से मुक्ति का अनुभव। तीन बंधन बताए कौन कौन से? एक तो हद की जिम्मेवारी है, दूसरा नहीं बंधन, एक तो हद, दूसरा अलौकिक जिम्मेदारी का बंधन, और तीसरा दुनिया के जो भी बंधन है उससे भी मुक्त है, और यहाँ जो है एक तो जिम्मेवारी और दूसरा अलौकिक बंधन जो है उससे भी मुक्त है। उससे कैसे मुक्त है? अलौकिक, क्योंकि वो बाप करा रहा है, मैं बढ़ाती हूँ नहीं, उसकी याद में है तो स्वतः ही बढ़ेगी, कंबाइंड रहेंगे तो सफलता, वो दूसरी पॉइंट, और समान
वाले
वो कर्तव्य में है वो, इसको चलो ये हो गए सारे समान। अभी दूसरा प्रश्न है, खाओ लाओ खाओ, खाती पीती आत्माओं की निशानी क्या है? ये कौन सी कैटेगरी आत्माओं की? जो कहते हैं लाओ और खाओ, और जो कहती है खाती पीती आत्माएं, ये थर्ड कैटेगरी है, क्या करती है ये? क्रेडिट कार्ड वाली क्या करती है ये आत्माएं? बोझ बढ़ाने वाली आत्माएं, एक तो कैटेगरी ये है उनका, दूसरा और दूसरा पॉइंट सहयोग कम देते या देते ही नहीं, कमाते नहीं बिल्कुल, ना के बराबर कमाई है,
मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा,
मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, छीन लेते हैं दूसरों का, क्या चीजें छीनते हैं? दो चीजें छीनती है दूसरी दूसरी आत्माओं की, प्रत्यक्ष फल और त्याग, त्याग का प्रत्यक्ष फल और श्रेष्ठ कर्म का, श्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य का हिस्सा, दूसरी आत्माओं के भाग्य का हिस्सा या फल, हाँ प्रत्यक्ष फल वो ले लेती है, और क्या करती है? आप खजानों को क्या करती है? अपने
सुख
के आराम, अपने आराम में लगाती है दूस खजानों को भी, तो ये कौन सी आत्मा है, अर्थात क्या है ये, कौन सी आत्मा है ये?
खाती
पीती मतलब, हाँ वही, अर्थात क्या, ये सब तो वर्णन बताया, और
उसके अलावा,
हाँ उसके अलावा इनको क्या कहेंगे, कौन सी आत्मा है ये? असंतुष्ट है, सब चाहिए चाहिए, और नाम मान शान के भिखारी है, और ये सहयोग नहीं दे रहे अभी, परंतु पहले वाली सीट अभी भी चाहिए,
आराम
पसंद है, पहले वाली सीट अभी भी चाहिए, अभी कोई सेवा नहीं कर रहे, शायद पहले कर ली, हाँ पहले पहले कमाई की पर अभी नहीं कर रही है, शायद कुछ पुरानी आत्माओं की चर्चा यहाँ है कि जिन्होंने पहले बहुत कमाई की अभी नहीं की, अभी नहीं कर रहे, और आराम पसंद, मेहनत उनको अच्छी नहीं लगती करना, सहयोग नहीं दे रहे,
पुरानी इच्छाओं के संस्कार फिर से जागृत हो गए,
पुरानी इच्छाओं के संस्कार फिर से जागृत हुए यहाँ, और आलसी या फिर
एक
निद्रा में है, एक मूर्छा में है, विस्मृति की अवस्था में है, भूल चुके हैं, पहले पता तो सब था परंतु अभी विस्मृति में है कि पुरुषार्थ भी करना है, समय का समय को भूल चुके हैं,
ड्रामा को उल्टा पकड़ लिया,
ये दिन ड्रामा में लिपटता जा रहा है, दूसरों को देखने वाले ऑटो से अर्जुन नहीं है। बाप करे तो करे, लास्ट संडे की मुरली, दूसरे करे तो मैं करे, बाप करे, बाप करेगा तो जो करेगा सो पाएगा, और दूसरे में दूसरे करे, दूसरों का स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो तो मैं करूं, परिस्थितियां बदले तो मैं, विघ्न बदलने वाले बदले तो मैं बदलूं, ये दूसरे बदले तो मैं बदलूं, ये वाला है साथी संबंधी ब्रह्मा बाबा का उदाहरण लास्ट संडे की मुरली। तो दूसरों पर वो जो एक डाली बताई थी ना, उसमें एक डाली थी पुरुषार्थ में आधार, किसी को आधार बना रखा है, उसमें भी किसी के चिंतन का भी आधार ना हो, हमारा चिंतन हमारा अपना चिंतन हो, किसी के क्लास का भी आधार नहीं हो, किसी के चिंतन का भी आधार नहीं हो, किसी के साथ का भी आधार नहीं हो, पुरुषार्थ हमारा इंडिपेंडेंट हो, अकेला हो, हम अकेले हैं पुरुषार्थ में,
बढ़ेगा तो तभी ना पहले आधार
वो ठीक है, परंतु उस आधार को ही सब कुछ मान लेना, वो भी डाली भाई बताया है बाबा ने, पुरुषार्थ में निराधार नहीं आधार, ये डाली है, इसको पकड़ लेते आलस और आलस के वश या फिर वशीभूत होने के कारण, और फिर चिल्लाते हैं छुड़ाओ छुड़ाओ बाबा बाबा उड़ाओ उड़ाओ, ये सब बात की बात है। तो ये वो आत्माएं हैं कि जो जिनको कमाई क्या करनी है वो पता ही नहीं है, वो जो राज कहा ना, राज जो कहा ना, वो राज यहाँ इनको पता ही नहीं कि क्या करना है, यहाँ कमाई करने का समय है, ये संगम युग, यहाँ एक कमाई है, एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स इज गोइंग ऑन। तो ये एक प्रश्न है, तो ऐसी आत्माएं नहीं बनना है कि जो क्या करे, खाती पीती हो, कमाई ना करे, आलस अलबेलापन हो, मूर्छा में हो, विस्मृति में हो, पुरुषार्थ के प्रति सजग नहीं है, किसी को आधार बना रखा है, किसी के चिंतन का, किसी के क्लास का, किसी के संग का कोई आधार ना हो, अनासक्त हो, इस बारे में भी। तो ये वो आत्मा है थर्ड नंबर की। अभी दूसरा प्रश्न, फायर प्रूफ किस किस बात में, बाबा ने फायर किसके लिए कहा, आग कहा है वायुमंडल को, क्यों, विकारों की आग, एक आग है विकारों की आग, आग और विनाश की आग से तो कम ही डरते हैं ब्राह्मण, व्यर्थ की आग, चारों ओर आग कौन सी है अभी, एक तो विकारों की, उसमें भी काम विकार, दूसरा व्यर्थ, तीसरा संग दोष और पश्चाताप की आग, नहीं नहीं उस आग के प्रूफ जो चारों ओर फैली हुई है आज, झूठ की आग है, चारों ओर झूठ ही झूठ है संसार में, कहीं पर सत्य की रत्ती भी नहीं है, और भय, चारों ओर भयभीत है आत्माएं, क्या हो जाएगा पता नहीं, भय, हाँ भ्रष्टाचार वाली भी है, परंतु भय की जो आग है, भय हर चीज के बारे में भयभीत है, साधनों में क्या कहेंगे उसको, हाँ उससे भी प्रूफ रहना, वो भी एक आग की तरह ही है जिसकी चपेट में सारा के सारा ब्राह्मण समाज आ रहा है, और साधन निगेटिविटी नकारात्मक भाव, कहीं पर विधायक चिंतन नहीं है, पॉजिटिव चिंतन बहुत कम है, चारों ओर निगेटिव चिंतन, व्यर्थ और निगेटिव और निराशा, दुख, पीड़ा, दर्द, उदासी है, पश्चाताप, ये इस अलग प्रकार के भाव है, उसमें भी निराशा मुख्य, पहले बहुत पुरुषार्थ कर लिया फिर पता चला नहीं हो रहा है फिर छोड़ दिया, बदले की आग, इसने हमारे साथ ऐसा किया हम भी उसके साथ करेंगे, ईर्ष्या की आग, बदले की आग और नफरत की आग, नफरत घृणा, नफरत करते हैं, ब्राह्मणों के बारे में बात चल रही है, बाहर की आत्माएं नहीं, मन में कहीं ना कहीं नफरत और घृणा ने जन्म लिया है, किसी के बार बार अवगुणों को देखकर एक सूक्ष्म घृणा मन में बन गई है कि ये आत्मा ठीक नहीं है, ये आत्मा पुरुषार्थ नहीं करती है, ये पुरुषार्थहीन है, इसका ये संस्कार नहीं बदल सकता कभी भी, ये जो भाव है ना ये भी एक नफरत है, और एक कोई बताइए, इच्छा है, सारे संसार इतनी सारी इच्छाएं, इच्छाएं भी जैसे आग है, बाबा कह रहे हैं फायर प्रूफ, अग्नि प्रूफ, सेक ना लगे, टकराव की आग, मनोमालिन्य, मन मुटाव, एक आत्मा का दूसरे आत्मा से नहीं जमता, अशुभ भावनाएं और आलस्य अलबेलापन भी एक आग ही है। विस्मृति इतनी सारी आग है, कैसे बचाएंगे? अब दूसरा प्रश्न ये है अपने आप को,
स्मृति की आग,
स्मृति की आग, एक आग से दूसरी आग। हाँ, भक्ति की ब्राह्मण समाज में भी करते हैं भक्ति, शिव बाबा के भक्त तो बहुत है ना, परिस्थिति आ गई तो बाबा से मांगना, ये सब भक्त। अच्छा, वो स्थूल वाली। चलो, और हाँ ये तो हो गया आग, अब इस आग से कैसे बचे?
पानी डालना पड़ेगा।
वो आग बुझाने वाले क्या क्या करते हैं, पहले तो वहां जाओ, अग्नि
पहले तो
वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, एक हर जगह लगा होता है, एक तो वैसा कुछ चाहिए कि आग लगते ही वो ऑन करो और बुझाओ। परंतु वो सीखना भी पड़ेगा, उसको कैसे चलाते हैं उसकी ट्रेनिंग है अपनी एक। हाँ बराबर, उसके सिवा नहीं होगा वो, उसके भी अलग अलग टाइप्स है, एक छोटा एक बड़ा। हाँ ट्रेनिंग मिला है ना, हर एक का अलग अलग है, वहाँ लिखा होता है ये किस लिए है, लिक्विड का है, कौन सी फ्लेम है। तो यहाँ पर भी काम विकार की आग है, उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हो। क्रोध की आग, उसमें विकारों में तो सब आ गया, परंतु क्रोध एक विशेष आग है, अहंकार की आग। तो अब इस आग को कैसे बुझाना है? पुरुषार्थ की आग से और लगन की अग्नि से, आत्माभिमानी स्थिति से, अशरीरीपन से, फरिश्ता स्वरूप से, योग को बढ़ाने से, समझ से और चिंतन से, ड्रामा के चिंतन से। और पहले तो ये देखना है कि इस आग से क्या नुकसान होता है।
पहले आग लगी कौन कौन सी है?
पहले तो आग कौन कौन सी लगी, दूसरा प्रश्न है क्यों लगी, तीसरा प्रश्न है कब लगी, चौथा प्रश्न है कहाँ से लगी, शुरुआत कहाँ से, किसने लगाई
आग?
कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कोई टीवी है, सीरियल है, वीडियो है, कहाँ से लगी ये आग, कहाँ से लगी, क्यों लगी, कब लगी, कौन सी कमजोरी के कारण लगी, और ये जो लगी इससे मुझे क्या नुकसान हुआ,
और बताया किसने की आग लगी।
मुझे अपने जीवन में इस आग से क्या नुकसान हुआ है, फिर उसके बाद में अपने आप ये अंडरस्टैंडिंग आने के बाद ही आग बुझाने का संकल्प आएगा। तब तक कैसे आएगा, क्यों बुझाएंगे कोई आग? और जब ये पता हो सबसे पहले कि आग है, तो आग बुझाने का संकल्प आएगा। जैसे उदाहरण में बताते हैं, महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है कि मुझे कोई ऐसी शिक्षा दो जो मुझे आगे चल के काम आएगी, कभी भी दे सकते हो, कहता है आज दो या कल दो, आप कहो कल दो तो मैं कल आ जाऊंगा, पर मुझे कोई ऐसी शिक्षा दो। तो उसको कहते हैं कि मैं किसी गांव के पास से गुजरता था, तो वहां एक घर में आग लगी थी, और मैंने उन लोगों को कहा कि आप लोग कल, अभी क्यों भाग रहे हो, कल भागना, जो घर में आग लगी है अभी क्यों भाग रहे हो,
कल भागना।
तो वो उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारी भी स्थिति ऐसी है कि जब तुमको ये पता चलेगा ना कि आग है, तो तुम किसी को पूछोगे नहीं, कोई मार्ग बताओ, पुरुषार्थ क्या करे, कैसा करे, खुद ही भागोगे वहां से। मतलब अभी पता ही नहीं है कि आग लगी हुई है, पहला तो ये पता चाहिए कि आग है, फिर उसके बाद में आग से क्या क्या नुकसान है, और उसके बाद में फिर मार्ग क्या है। जिन्होंने अपना जीवन ब्रह्मचर्य में नहीं गुजारा, बचपन जिसका ब्रह्मचर्य में नहीं गुजरा, वो पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। इसलिए पहले तो ये पता चाहिए कि अब्रह्मचर्य काम आग है, विकार आग है, जलाते हैं, अल्पकालीन सुख प्राप्त होता है, परंतु जीवन जलता है स्मृतियों से, विकार की स्मृतियों से, उससे कैसे छूटेंगे। उसके लिए सबसे पहली बात तो यही है कि ये आग है, हमें नहीं लगी परंतु दूसरों को तो लगी। उससे जो सीखता है वो ज्यादा बुद्धिमान है। अभी तीसरा प्रश्न तो ये हो गया। हाँ, तो कैसे करेंगे? एक तो योग का चार्ट बढ़ाने से, कुछ दिन पहले मुरली थी ना, याद का बल होगा तो
गिरेंगे
नहीं, गिरना नहीं है। उसके लिए याद का बल चाहिए, अशरीरीपन की अवस्था चाहिए, ऐसी पवित्रता की शक्ति चाहिए अंदर, तो ही गिरेंगे नहीं। नहीं तो इस मन को भी आदत है और देह को भी आदत है भोग की, जन्म जन्म वासना की चक्की में पिसा हुआ यह देह है और ये आत्मा है, वो फिर से उसको खींचेगा, फिर से उसको अपनी तरफ लेके घसीटेगा। और वातावरण भी वैसा ही है, इस वातावरण में बचाव का मार्ग अशरीरी अवस्था, आत्मा में जो सुख है उसका अनुभव करना। जिसने वो टेस्ट ले लिया उसके लिए ये टेस्ट व्यर्थ है। तो योग, पुरुषार्थ का प्लानिंग, तपस्या का चार्ट, समय की पहचान, ये सारी चीजें करनी है, तो कहीं जाके हम अग्नि प्रूफ होंगे। यहाँ की किसी भी बात का सेक नहीं लगेगा। इस संसार में है परंतु जैसे संसार में नहीं है, कहा ना आज, प्रवृत्ति में रहते हैं परंतु प्रवृत्ति की वृत्ति से परे है। अलौकिक कार्य कर रहे हैं परंतु ध्यान सारा अलौकिक कार्य की तरफ है, अनासक्त है। कितना सुंदर शब्द है, शब्द में ही आकर्षण है, अनासक्त। केवल उच्चारण से ही सुख का अनुभव होता है। विरक्त कहो, अनासक्त कहो, विरक्त उससे भी ऊपर है। तो अनासक्त शब्द, तो फायर प्रूफ, कोई भी आग हमें जलाए ना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। परंतु विकार आत्मा को जलाते हैं, विकार आत्मा को जलाते हैं। आत्मा किसी से नहीं, आत्मा अग्नि से जलती नहीं है, पर विकारों से जरूर जलती है।
काली होती है, काली होती, जलती नहीं है।
अच्छा। चलो तीसरा प्रश्न, आदर्श शिक्षक कौन है आज की मुरली से? पहले आज की मुरली से, फिर बाहर का।
जो दूसरों के लिए जीने वाले हैं,
जो दूसरों के लिए जीने वाले हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अलोन, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, विवेकानंद ने कहीं कहा है। वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते, बाकी तो सब मरे पड़े हैं, मृत है। तो जो दूसरों के लिए जीते, एक आदर्श शिक्षक, और अपने जीवन से शिक्षा देते, अपना बोल, उनका बोलना, उनका सोचना, उनका चलना भी सिखाता है। हर संकल्प, हर सेकंड सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए है। और स्वप्न में भी सेवा, हाँ, ये दूसरा प्रश्न था, है ना? स्वप्न, चलो इसी प्रश्न पर आ जाते हैं। स्वप्न में से एक है स्वप्न में सेवा आना, दूसरा है स्वप्न से सेवा करना, दो अलग अलग प्रश्न है। एक है स्वप्न में सेवा आना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा है स्वप्न से सेवा, कैसे? स्वप्न पांच प्रकार के होते हैं, मनोविज्ञान कहता है पांच प्रकार के स्वप्न है। सबसे पहला स्वप्न, सबसे सामान्य 90%, 90% जो स्वप्न होता है वो है सारे दिन भर हमने जो कुछ किया वो रात में याद आता है, स्वप्न में दिख जाता है। इसके लिए यदि हमने कोई भाषण दिया और कोई आके सभा से कहे कि रात में आप दिखे, तो इसमें बहुत महान समझने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी के स्वप्न में गए और उसको हमने हम उसके स्वप्न में दिखे। दिस इज ये जो स्वप्न है सबसे सामान्य स्वप्न है कि जो भी दिन भर में हुआ, जिसके संपर्क में आए, वो कुछ ना कुछ दिख जाता है, किसी भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट। सेकंड टाइप ऑफ स्वप्न है सप्रेशन, जिसको दिन भर दबा के रखा वो रात में निकलता है फिर बाहर। किसी ने जबरदस्ती उपवास किया तो स्वप्न में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके आता है। जिसने सारे दिन भर काम वासना को का दमन किया उसे काम रात में पीड़ित करता है स्वप्न में। जहां दमन होगा, दमित वासनाएं, दमित भावनाएं निकल निकल कर बाहर आती है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ ड्रीम सप्रेशन। थर्ड टाइप है ड्रीम्स का पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म का हमको पता नहीं, पर वहां की बातें स्वप्न में आती है। कोई कोई लोग होता है जिनको पुराने जन्म का याद आता है तो पहले से उनको स्वप्न में दिखता है वो बहुत सारी चीजें। स्वप्न में ऐसा हुआ, फिर उठते हैं तो भूल जाते हैं, फिर याद नहीं रहता है। थर्ड टाइप ऑफ ड्रीम।
लंबा समय कैसे याद रहता है?
आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड है। आत्मा में गया कुछ भी कहीं नहीं गया, आत्मा का सब कुछ आत्मा में है। दैट इज द थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप ऑफ ड्रीम है फ्रॉम द सुपर कॉन्शियसनेस, अति चेतन से आने वाले जो स्वप्न है उसमें शायद कुछ रिविलेशन हो सकता है, कुछ डिवाइन साक्षात्कार जैसा कुछ हो सकता है। और पांचवे प्रकार के स्वप्न है जो फ्यूचर के बारे में, आगे क्या होने वाला है उसका पहले ही स्वप्न में दिख जाता है। सिक्स्थ सेंस, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसमें स्वप्न में यह आता है कि कल क्या होने वाला है, कल किसी की मृत्यु होने वाली है, वो आज दिख जाता है स्वप्न में। ये पांच प्रकार है स्वप्न के। बाबा क्या कह रहे हैं? स्वप्न से सेवा करो, स्वप्न में सेवा। स्वप्न में पहला प्रश्न तो ये है, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
एक
सिगमंड फ्राइड नाम का जो व्यक्ति है उसने बहुत सारे स्वप्न पर बहुत सारा रिसर्च किया है, किताब भी है 1000 Interpretations of the Dreams, उसमें तो अलग अलग लिखा, बहुत सारी चीजें दी हुई है। परंतु ये जो पांच प्रकार है, इन्हीं पांच प्रकार में स्वप्न डिवाइड होता है। सबसे रेयर जो है वो सुपर कॉन्शियसनेस से आने वाला है, उसके बाद जो रेयर है वो है फ्यूचर का आने वाला, बाकी जो तीन है उसमें भी सबसे कॉमन जो है वो सारे दिन भर जो भी होता है वो, या दूसरा जो है वो सप्रेशन वाला, तीसरा जो है वो पूर्व जन्म वाला। ऐसे रेयर 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 टाइप से
कोई सपना ऐसा होता है जो कुछ सोचा ही नहीं है,
सोचा ही नहीं है, वो पूर्व जन्म,
पूर्व जन्म
वो इस जन्म का है नहीं,
कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई दिन में उसका कोई लिंक ही नहीं।
हाँ,
जीवन में लिंक नहीं,
जीवन में ही लिंक नहीं है कोई, वो इस जीवन की, इस जीवन में कोई लिंक नहीं है, ऐसा ऐसा दिखेगा। कोई कोई स्वप्न में कोई दूसरी भाषा बोलने लगते जिसका उसको वो आती नहीं भाषा, जिस घर में जन्म ही नहीं हुआ है, जिस पूरे देश और मुल्क में वो भाषा बोली नहीं जाती है, वो भाषा स्वप्न में बोलता है।
सोल जो कोई आती है वो भी भाषा चेंज हो
जाती है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, साक्षात्कार एक रीति से अलग चीज है, डिवाइन विजन जिसको कहते हैं ना, वो एकदम दूसरी। उसमें व्यक्ति जो होता है सोया हुआ नहीं रहता है, पूरा जागृत अवस्था में कुछ दिख जाए साक्षात्कार। तो डिवाइन विजन अलग, ये ड्रीम्स अलग, उसके ये पांच प्रकार अलग। तो बाबा कह रहे स्वप्न में सेवा नहीं, स्वप्न में पहले तो सेवा हो, दिखे। वो कैसा? स्वप्न में वो ही दिखता है सारे दिन भर जो होता है, एक तो वो, या फिर जो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया है वो स्वप्न में दिखता है, या फिर जिसकी आदत बन गई है वो दिखता है, या फिर सारे दिन भर जिसी के बारे में सोच रहे वही स्वप्न में आता है। अर्थात कि सेवा का ही संकल्प हो सारे दिन भर, संकल्प स्वप्न सेवा, संकल्प और हर सेकंड सेवा में हो, सेवा के लिए हो, तो फिर रात में दिखेगा। परंतु बाबा यहाँ जो बात कर रहे हैं उसके भी आगे की बात कर रहे हैं, स्वप्न से सेवा। वो कैसे?
पहले दिन में स्वप्न देखने पड़ेंगे।
किसी एक भाई ने हमको बताया ये जो बात है ना, स्वप्न में सेवा कैसे हो, उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है सोना पड़ेगा। नींद पहले तो फर्स्ट यू हैव टू स्लीप, उसके बाद में बाकी का होगा।
पहले सोचना पड़ेगा हमको स्वप्न में सेवा करने के लिए सो रहा हूँ।
पहला तो स्टेप ये है कि स्वप्न सेवा क्या है, उससे फिर सेवा हो वो दूसरी बात है। पहले इतना तो कि सेवा क्या है, उसके लिए कितना ऑक्यूपाय करना पड़ेगा माइंड को सारे दिन भर में, केवल सेवा सेवा सेवा। और सेवा अर्थात केवल जा के किसी को ज्ञान सुनाना ही नहीं है ना।
एक बार हमने सपन देखा था सेवा की, सपने में तो मान नहीं रहा था कि सर्वव्यापी है, मैं बोला सर्वव्यापी नहीं है, नहीं माना मैं, और उसको मान गया। भला इधर लोग बेवकूफ है जो कह रहे हैं
ये जो ज्ञान सुनाते सुनाते कभी कभी क्या होता है, हमारा अहम जागृत होता है उसमें ऐसा होता है कि मैं कह रहा हूँ ये ठीक है, हम ये बोल रहे हैं ना इतने लोग, मतलब उसमें मैं मतलब सामूहिक मैं, यूनिवर्स पूरा ये ब्राह्मण समाज का वो मैं, हम बोल रहे हैं ना फिर भी नहीं मानते हो ये सब, मतलब वो वास्तव में सकाम कर्म हुआ, वो निष्काम कर्म नहीं हुआ है, सकाम कर्म में आ गया वो कैटेगरी की जिसमें हम उसका परिणाम चाहते हैं और दूसरों से मनवाना चाहते हैं। उसमें ड्रामा की विस्मृति भी है कि हम ये भूल रहे हैं, जैसे भगवान आता है और कितना साक्षी भाव से बैठता है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, किसी ने कुछ किया नहीं किया उसने सारे राज खोल के रख दिए 69 से लेकर अब तक की मुरलियों में, फिर भी ऐसे बैठता है जैसे वो पहली बार आ रहा है, जैसे उसने कभी कुछ बताया ही नहीं है कोई भी राज। अगर उससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उससे ऐसे उत्तर देता है कि जैसे फ्रेश अभी दे रहा है, ये भी नहीं कहता है कि रेफर टू मुरली नंबर 1969 और रेफर टू पेज नंबर दिस, कुछ भी नहीं। उसको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के सारे उत्तर वो दे चुका है, ऐसा एक भी उत्तर नहीं है कि जो उसने नहीं दिया, फिर भी कभी डांटते हुए देखा
तो
कभी नहीं।
एक बार
डांटेगा वो दूसरी बात है तो सबसे पहले तो स्वप्न में सेवा आ जाए, नहीं आ रही है, पहला प्रश्न तो यह है कि नहीं आ रही है, उसका कारण कि सेवा अभी तक समाई नहीं है मन में। जैसे वो स्पंज को रखते हैं ना पानी में तो उसमें पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, वैसा नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर से केवल अचेतन मन में सेवाएं चल रही है, अवचेतन कुछ और बातों में रमन कर रहा है, अवचेतन की जो का जो सुख है, अवचेतन की जो इच्छाएं है वो अपनी है, ये चेतन मन में सब कुछ चल रहा है जो स्वप्नों में कभी नहीं आता। बुद्धि हाँ मतलब ऊपर ऊपर से सब कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे, दिन भर लोगों को समझा रहे, 7 दिन का कोर्स करा रहे, जो भी इस तरह की सारी सेवाएं कर रहे, बट दैट इज ओनली ऑन द कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, सबकॉन्शियस इज बिजी इन सेंस इंटेलिजेंस, सबकॉन्शियस कहीं और बिजी है, उसकी आंतरिक सुख जो है, जैसे सेवा पूरी हुई अभी ये करो चलो, अभी टीवी देखो, ये देखो, वो करो, ये करो, इधर जाओ उधर जाओ, इधर घूमो उधर घूमो, इससे बात करो उससे बात करो, ये सब ये बेसिक इच्छा है, सेवाएं ऊपर ऊपर, ये दोनों एक जब होगा ना तब स्वप्न में आएगा। और दूसरा प्रश्न है कि स्वप्न से सेवा वो कैसे, स्वप्न से सेवा नहीं, नींद से सेवा नहीं, स्वप्न से किसी को जाके संदेश देना स्वप्न में, और उसको भी वो पता चले कि ये हमारे आए थे, जैसे कल का वरदान था ना, जैसे आकाश में फरिश्ते प्रकट हो जाते, बादल जैसे छा जाते हैं, वैसे उनको भी लगे, जैसे पहले लगता था कि ये श्वेत वस्त्रधारी कौन है, बाद में अभी लगे कि ये फरिश्ते कौन है,
तो बिना स्वप्न के कोई, हम किसी के सपने में आ रहे थे, हमने तो किया सेवा की, तो कहते आप हमारे सपने में आए थे,
वो वाली बात है, वो जो पहला जो हाँ वो वाली चीज जो थी ना, केवल यहाँ की बात नहीं, आज तक जितने धर्मों की स्थापना हुई या द्वापर से जितना आध्यात्मिक बात चला, उन सभी में जो भी धर्म गुरु थे वो उनके भक्तों के स्वप्नों में आकर उनकी मदद करते थे और उनको हल बताते थे, ये करो, ऐसा ऐसा करो, सभी ऑलमोस्ट सभी, और केवल एक हिंदू धर्म नहीं, बाकी सभी धर्मों में। हाँ वैसे तो शील दादी के तन में भी आके बाबा ने कहा था ना डीजल लीक हो रहा है यहाँ पर, वो भी मधुबन का डीजल लीक हो रहा है, कहाँ आके बताया, मुंबई में, अभी नहीं बताता है, तो वो उसका ही एक्सटेंशन है, पहले तो बिजी रखना सेवा में दिन भर, तो रात में स्वप्न आए, और फिर उस स्वप्न के ही आगे की स्टेज है किसी और की सेवा हो जाए उससे कि आगे का। तो हम कहाँ थे, आदर्श शिक्षक पर थे,
नहीं, जैसे बाबा बोला ना मुरली में कि उड़ता पंछी बनकर विश्व परिक्रमा कर,
जो उड़ता पंछी है वही विश्व परिक्रमा कर सकता है
बाबा के साथ विश्व परिक्रमा कर। तो ये हम
वो तो योग हो गया ना, हम यहाँ स्वप्न की बात कर रहे हैं जिसमें हम सोए हैं,
सोने के पहले करेंगे
तो तब होगा। अच्छा विधि, हाँ सोने के पहले करेंगे तो होगा,
सोने के पहले आप करो।
हाँ
और स्ट्रॉन्ग संकल्प करो मेरे जो नींद है और ये सेवा होनी चाहिए।
आज आप सपने में सेवा करा लेना,
सेवा होंगी
पहले तो जागते हुए हो जाए ना।
सपनों के ऊपर हमारा वास्तव में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, क्या सपना आएगा ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मैं अभी सो रहा हूँ मुझे आज ये सपना आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, वरना मुश्किल है, हो भी सकता है। हाँ वो तो एक्चुअली यहाँ पर जो बात कही ना दृढ़ता, पूरे प्राणों से यदि कोई संकल्प कर ले तो वो साकार होना ही है। अगर कोई ये सोचे कि मैं रात में आज ये, तो वो भी होगा। जैसे एक सत्य घटना है विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य अब नहीं है, 15वीं-16वीं शताब्दी में कभी विजयनगर साम्राज्य था, वहां पर उस राज्य में कोई एक संगीतज्ञ था जो कि बहुत प्रसिद्ध था और बहुत चाहता था सारे राज्य में। उसकी जब 70वीं वर्षगांठ थी तो बहुत बड़ा समारोह था वहां पर, और वहां पर दूर दूर से लोग आ रहे थे, राजा महाराजा आ रहे थे और उसको कोई ना कोई भेंट दे रहे थे उसके सालगिरह की। तो दिखाया है कि एक भिखमंगा, एक भिखारी आता है और जो कहता है कि मुझे भी इस संगीतज्ञ को कुछ देना है। तो पहले तो वो जो प्रतिहारी होते हैं, द्वारपाल होते हैं, वो उसको आने नहीं देते अंदर। फिर जब ये आवाज उस तक पहुंचती है तो वो कहते हैं आने दो, वैसे तो गिफ्ट दे रहे तो प्यार से तो स्वीकार करनी ही चाहिए, तो आने दो। तो उस पर सब हंसते हैं, वो भिखारी आता है अंदर और वो भिखारी कहता है कि मेरी जो बची हुई आयु है, वो उसको कहते तुम क्या दोगे, क्या लाया है तुमने, तो वो कहता है मैंने ऐसी वस्तु लाई है कि किसी और ने वो वस्तु नहीं लाई है, मेरी जो शेष आयु है वो आपको लग जाए, इतना कहता है और देह को त्याग देता है। कैसा संकल्प होगा वो, ऐसा समग्रता पूर्ण संकल्प चाहिए फिर सफलता होती है। कोई भी चीज सफल हो, चाहे वो देह को छोड़ने की बात हो, चाहे फिर कोई भी बात हो, इतना प्राणपन से किया हुआ संकल्प, इतना संपूर्ण प्राणों से किया हुआ संकल्प अगर कोई है तो उसको सफल होना ही है। वैसा एक दूसरी एक उदाहरण देते हैं स्वामी रामतीर्थ के जीवन का, कि वो गणित के जब विद्यार्थी थे और एमए कर रहे थे गणित में, मैथमेटिक्स, तब दूसरे दिन उनका पेपर था, एग्जामिनेशन था। तो वो उनकी आदत ऐसी रहती थी कि अगर 12 प्रश्न है एग्जाम में, वो बहुत बहुत ही ब्रिलियंट थे मैथमेटिक्स में, 12 प्रश्न सॉल्व कर, 12 प्रश्नों में से 7 या 8 प्रश्न करने हैं तो 12 के 12 सॉल्व कर देते थे और वहां लिख देते इसमें से जो जांचना है वो जांच लो एग्जामिनर के लिए, नो टेक, माना इतना कॉन्फिडेंट थे कि जो आपको लेना है 7-12 के 12 प्रश्न से वो आप ले लो। तो उसके जीवन में एक दिखाया है, बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है, कि दूसरे दिन परीक्षा है एमए की और एक गणित का सवाल है जो उसका हल ही उसे मिल नहीं रहा है, वो लगा हुआ है रात को 9 बजे से लेकर तो सुबह 3 बजे तक। दूसरे दिन पेपर है, अभी बाकी पढ़ना भी बाकी है, परंतु एक ही प्रश्न है उसके पीछे लगे हुए है, एक ही प्रश्न है। उसका मित्र उससे कहता है अरे जरूरी थोड़ी नहीं ये प्रश्न आने वाला है, छोड़ो उसको बाकी भी तो पढ़ना है। वो कहता है नहीं यहाँ पढ़ने की तो अब बात ही नहीं रह गई, अब तो बस ये है और मैं हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं, ये प्रश्न हल होना ही चाहिए। हल करते करते 3 बज जाते हैं सुबह के, फिर धीरे धीरे 4 बज जाते हैं। उसका मित्र उसको कहता है अभी तो सो जाओ, अभी बस 2 ही घंटे बाकी है सुबह होने के लिए, कब पढ़ोगे, बाकी भी तो पढ़ना बाकी है। वो कहता है अब बहुत हो गया, सीधा उठता है, एक छुरा लेकर आता है, नंगा छुरा जो रखता है टेबल पर अपने, और कहता है अगर 15 मिनट में इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला तो ये छुरा छाती के आर पार होगा। और वो सर्द रात इतनी ठंडी, और वो बैठता है फिर से सॉल्व करने, पूरा पसीना पसीना हो जाता है और 5 मिनट के अंदर उसको वो हल मिल जाता है उस मैथमेटिक्स के प्रश्न का, और फिर अपने मित्र से कहता है कि हल मिल गया। तो मित्र कहता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, मैं भी ऐसा ही करूंगा, जब कुछ आया नहीं तो फटाफट चूरा सामने रख दूंगा और 15 मिनट का टाइम वो अलार्म लगा दूंगा, जैसे राम तीर्थ ने किया था अलार्म लगा दिया, वैसे मैं भी करूंगा, ये तो बहुत आसान है। अच्छा चलो नहीं भी मिला तो क्या फर्क पड़ता है, मारना तो है नहीं। तो रामातीर्थ उससे कहते हैं ये कोई तरकीब नहीं थी, अगर हल नहीं मिलता तो वास्तव में वो छुरा आर पार होता। ऐसा प्राणपन से, ऐसा दृढ़ता से, ऐसा डिटर्मिनेशन से अगर कोई संकल्प करे तो वो होना ही है, स्वर्ग के देवताएं भी उसे रोक नहीं सकते, फिर कोई नहीं रोक सकता संसार में। ऐसी पूर्णता से, समग्रता से, इंटीग्रिटी से, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से, डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता से वो संकल्प हो, चाहे वो एग्जाम पास करना हो या संपूर्ण बनना हो संसार की कोई परीक्षा। आदर्श शिक्षक कौन है, वहीं पे थे हम, अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये 16 होंगे पूरे, चलो जल्दी जल्दी करते हैं।
जो दूसरों को अपने से आगे बढ़ाए
एक शिक्षक, चलो इधर का छोड़ो, वहाँ पहुँच जाओ, स्कूल में पहुँच जाओ, एक अच्छा टीचर कौन है?
अच्छा टीचर
जो स्टूडेंट्स को सुनता है, जो क्या देने की भावना, शिक्षा है देने की भावना, और बहुत खुद ही डिसिप्लिन हो, तभी तो दूसरों को डिसिप्लिन कर सकता है, और जबरदस्ती ना करे, उनको प्यार से पढ़ाने वाला, रोचक रमणीकता से, क्रिएटिविटी से एंटरटेन करे और फिर पढ़ाए, उनको इंटरेस्ट डेवलप करे सब्जेक्ट में,
जिसमें
सारे स्टूडेंट्स आ जाए।
स्टूडेंट एब्सेंट है तो मेरा टीचर ठीक नहीं लगता।
हाँ, और कंपैरिजन ना करे, उसका जो है ना समदर्शी हो, वो टाइम डिसिप्लिन हो, समय का पाबंद खुद हो, पंक्चुअल, और सबकी बात सुनने वाला हो, निमित्त भाव हो, अहंकार ना हो कि मैं ये करता हूँ, और ये भी ना करे अगर कोई प्रश्न उसे पूछे और उसे ना आता हो, ये ना कहे कि मैं तो जानता हूँ, किस इरिटेट नहीं होना है। अपनत्व का भाव हो, अपनापन का, और कमजोर स्टूडेंट को आगे कैसे बढ़ाना हो, हेल्प करे, सहयोग थे, और
सुप्रीम टीचर को देखकर मुरली में जो आता है ना वो कैसा पढ़ाता है,
जैसे बाबा पढ़ाते हैं ना, बस वैसा पढ़ाए, प्यार प्यार से, बहुत बहुत प्यार से, हे बच्चा, ये टीचर को कभी गुस्सा ही नहीं आता है, देखो कभी भी गुस्सा नहीं आता है,
बोलता मैं तुम्हारे शरीर को जला के लेके,
हाँ वो तो बोलता है पर उसको कोई पढ़ाई करता नहीं करता, वो कितना पक्का है उसका ड्रामा का पार्ट, हाँ होमवर्क देगा, लाना है क्वालिटीज अपने में लाने। चलो आगे, कि संगम युग में किन किन चीजों का महत्व है आज की मुरली से, सबसे पहले समय का महत्व, हर घड़ी का महत्व, हर सेकंड का महत्व, ब्राह्मण का महत्व, सेवाधारी का महत्व, टीचर का महत्व, गोपिका का महत्व, पांडव का महत्व, हर एक का महत्व, मधुबन का महत्व, मुरली का महत्व, यज्ञ भूमि का महत्व, यज्ञ की दिनचर्या का महत्व, अमृत वेले का महत्व, ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व, ब्रह्मा भोजन का महत्व, नुमा शाम के योग का महत्व, रात के सोने की विधि का महत्व, अशरीरीपन अशरीरी बार बार बनने का महत्व, 5 स्वरूपों की ड्रिल करने का महत्व, बाप से प्यार करने, एग्जाम्पल बनने का महत्व, ये बहुत सारे प्रश्न है। अच्छा संगम युग के 4 नाम आज की मुरली से,
संगम युग के 4 नाम बताएं,
इसमें नहीं है प्रश्न पर ऐसे ही पूछ रहे, ये वरदान युग है, कल्याणकारी वो सब पूरा साल भर का मत बताओ, आज का बताओ, प्रत्यक्ष फल 2, तीसरा महान बनने और महान बनाने का युग, महत्व का युग, 4 नाम है। फिर बाप को क्या क्या पूछना बच्चों की, जैसे इंसल्ट है, टीचर्स के लिए कहा है ये, संतुष्ट हो, राजी खुशी हो, कोई दुख तो नहीं है, संपूर्ण बनोगे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, और 108 में आओगे, हम ही तो आने वाले हैं, निश्चय है, हमें नहीं निश्चय हुआ तो किसको निश्चय नहीं हुआ? और तैयार हो जाने के लिए कब से तैयार बैठे है? याद याद मतलब फांसी पर लटके हुए हैं और आप पूछ रहे हो याद करते हो?
नहीं, कई बार तो याद ऐसी ही होती है कि बस नीचे जाओ ही नहीं, क्या करना नीचे।
हाँ वो चलो वो दूसरी ये हो गया। त्याग का त्याग किन बातों में?
मान मर्तबा
प्रशंसा। पूरी मुरली जो है ना वो वास्तव में इस बात के लिए है कि कोई भी श्रेष्ठ कर्म करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रशंसा होगी, महिमा होगी, स्तुति होगी, सिद्धि प्राप्त होगी। परंतु ये सिद्धि जो है ये फल इसको खाना नहीं है, चट्टिया है, जैसे स्टेप्स है, सोपान है मंजिल की, परंतु मंजिल नहीं है, पड़ाव मात्र है, मंजिल कुछ और है। इसके लिए प्रशंसा, स्तुति, एप्रिसिएशन, ये कच्चा फल है, इसको खाना ही नहीं है। क्या करना है इसको? एक तो बांट दो या तो भोग लगा दो। दो ऑप्शन है, एक तो भोग लगा दो कि ये प्रशंसा तुम्हारी। वो किसने उदाहरण दिया था? शायद आशा बहन जी ने दिया था कि जब बाबा का कोई संदेश देने या भाषण करने बहने बाहर जाती है ना कहीं पब्लिक प्रोग्राम करने, तो बाबा के सामने पूरी तैयारी वगैरह करते, बाबा को कहते कि बस ये बाबा आपका है, आप संभाल लो, अब मैं तो जा रही हूँ भाषण देने वगैरह वगैरह। फिर जाती है भाषण वगैरह देते, अच्छा भाषण हो जाता है बहुत, फिर उधर भूल जाते, फिर वो मैंने दिया। पहले गए किस भाव से थे कि बाबा आप जो बुलवाना है बुलवा देना, आप भाषण मैंने कभी दिया नहीं है इधर, और नए लोग है, नई प्रजा, वो लोग जो है एकदम नए है, स्थान भी नया है, क्या बोलना है ज्यादा तैयारी भी नहीं है, तो आप जो भी बोल रहे हैं बोल देना। वहां पहुंच के भाषण दिया, वाह वाह हुई, मैंने किया, फिर वो भूल जाता है। भगवान भी बैठ के सोचता होगा ना ये देखकर सीन,
अगले दिन फिर ऐसे पूछेंगे।
तो हाँ हाँ, क्या करना है? बांट देना, एक तो बांट दो प्रसाद समझकर, बांट देना अर्थात, और भोग लगाना अर्थात, भोग लगाना तो मतलब बाप को समर्पित कर देना कि ये तुम्हारा था, तुमको दे दिया, बस अब हमारा कुछ है ही नहीं इसमें। एक तो ये, दूसरा है बांट देना, वो क्या?
सहयोग।
यहाँ कोई एक की वजह से थोड़ी हो रहा है, ये तो टीम वर्क है। यहाँ कोई एक की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई अगर सोचे कि मैं कर रहा हूँ तो ये तो जैसे उस दिन का ना, पहले तो एकोमोडेशन वो मिल गया, वो तो वहीं आधे खुश तो वहीं हो जाते, फिर भोजन से आधे खुश हो जाते, फिर यहाँ की व्यवस्था देखकर आधे खुश हो जाते, अभी बचा जो 10% उसमें फिर 5% वो जो बोलने वाला है स्पीकर उसके उसका है, पर वो सोचे कि मैं ही कर रहा हूँ, तो ये तो क्या हो गया? इसके लिए एक का पदम गुना जमा नहीं होगा, ये फिर सेकेंड कैटेगरी में आ जाएंगे, फर्स्ट कैटेगरी वाले नहीं रहेंगे। हाँ तो ये एक बात है। उसके बाद राइट हैंड हो गया, मास्टर वरदाता कैसे बने? वरदान देना है किसी को, कैसे देंगे वरदान के स्वरूप? एक तो हाँ बोल से ही वरदान, बोल से ही दिया जा रहा है। कैसे हम ऐसा क्या करें कि हम बोले और वो वरदान हो जाए?
पहले तो स्वयं के मन को शुभ भावना से इतना परिपूर्ण हो जाए कि स्वतः वो बोले।
हाँ, स्वयं को अपने आप को इतना शुभ भावना से भर देना है कि वो नेचुरल जो भी बोले वो सत्य हो जाए। एक दूसरा शास्त्र में कहा है कि जो व्यक्ति 12 साल तक सत्य बोलता है उसके मुख से फिर जो भी बोलेगा वो वरदान बन जाएगा, सिद्ध हो जाएगा वो। और वरदाता अर्थात वर देने वाला, जो दूसरों को वर दे, इतनी क्षमता, सारे ऋषि मुनियों में ये क्षमता थी कि दूसरों को वर दे देते थे। जो एक बार भी यहाँ सुनाया था, जो स्वामी योगानंद की जो किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत, उसमें भी वर्णन है, एक व्यक्ति का वर्णन है डिकिंसन नाम का। विवेकानंद जब भाषण दे रहे थे शिकागो में, तो भाषण के बाद वो व्यक्ति सीधा गया और कहा कि मुझे आपको अपना गुरु बनाना है। 1893 की बात है ये, पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा गुरु आएगा और तुमको एक सिल्वर ग्लास देगा। 1893 में स्वामी योगानंद का जन्म हुआ भारत में, मुकुंद घोष, इधर मध्य प्रदेश या यूपी में, और फिर वो बड़े हुए, फिर भगवान की खोज की, फिर सन्यास लिया, फिर गुरु से मिले, फिर तपस्या की, साधना की, उसके बाद विदेश गए।
तब तो वो जिंदा
था। हाँ, तब तक वो बूढ़ा हो गया था। हाँ। तो वो तब जवान था डिकिंसन, तो तब जवान था ना, 20 साल का युवक होगा, एकदम जवान। तब उसने भाषण सुना और लगा कि मैं शिष्य बनूं, और फिर एक दिन इनका शिष्य बना, ये स्वामी योगानंद का। और फिर एक दिन अचानक योगानंद ने उसे सिल्वर ग्लास दिया, जो कि विवेकानंद ने तब कहा था। तो इतनी पावर हमारे शब्दों में, इतनी बोल हमारे बोल में तब आएगी जब ऐसी बहुत जबरदस्त साधना हो, तपस्या हो, प्यूरिटी का बल हो। बहुत एक्सट्रीम प्यूरिटी की आवश्यकता यहाँ पर है, एक्सट्रीम प्यूरिटी, सुपर प्यूरिटी। नेक्स्ट, साधारण खाना, रहना और चलना, अनासक्त के लिए बाबा ने कहा है। अनासक्त आत्माएं साधारण खाती है, रहती है और चलती है। ये तीनों ही चीजें साधारण हो, क्योंकि रहना चलना, हमारा रहना भी एकदम ऊंचा और एकदम नीचा भी ना हो, मध्यम जिसको बाबा कहते हैं, और चलना भी वैसा ही हो। बहुत सारी फैशन और ये सारी जो चीजें है संसार की, इन सब से हम दूर रहो, क्योंकि तपस्या का मार्ग है, वनवाह में तुम हो। तो ये सब चीजें हमारी साधना को स्वतः ही कम करती है, क्योंकि उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसके तरफ ध्यान रहता है। वो कुछ भी हो सकता है, क्रीम पाउडर, सेंट, इस तरह की जो भी चीजें है, वो सारी। खाना भी हमारा वैसा हो, बहुत गरिष्ठ, बहुत भारी करने वाला। योग के लिए दो बातें खाली चाहिए, अमृत वेला योग के लिए, पेट और बुद्धि,
दोनों साफ होने चाहिए।
विकारों से रहित स्वच्छ बुद्धि, उसके बाद अनासक्त वृत्ति क्या है, दूसरा प्रश्न।
कहां कोई लगाव, आंख ना डूबे हमारी,
हमारी कहीं पर भी आंख ना डूबे। जैसे हम कहीं किसी घर में गए या कहाँ गए, कोई किसी व्यक्ति के स्थान पे गए, एक होता है ना कि ये क्या है, वो क्या है। हमने देखा है कईयों को ये बहुत आदत होती है, ब्राह्मणों को भी होती है, ये कहाँ से लिया, ये वहां कहाँ से लिया, ये कितने का है, किसी को कितने का है पूजने की, जैसे प्राइस टैग है। वो हर चीज को देखते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न होता है ये कितने का है। या उनके पास जो प्रश्न होता, चीजें होती है, उसकी वो प्राइस बताते हैं कि ये इतने का लिया, यहाँ से लिया। कहीं पर भी हमारी आंख ना डूबे, कहां पर भी हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो यज्ञ की हो या बाहर की कहीं स्थान हो या कुछ भी हो, ये क्या है, वो क्या है, ये कहां से लिया, वो कहां से लिया, हमको क्या करना है, हम जाए और बस। हाँ, देखने की आवश्यकता ही नहीं, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, किसके पास कितने वस्त्र है, कितने सामान है, कितने साधन है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा मोबाइल है, कौन सी पर्स है, वॉट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, जो है वो है, रहने दो। ये जो कॉम्पिटिटिव का मनुष्य के मन का स्वभाव है कि वो हमेशा कंपेयर करता है, तुरंत कंपेयर करना चालू करता है, इसके पास ये, मेरे पास नहीं है, इसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है, ये जो भाव है कहीं ना कहीं उसको अंदर ही अंदर गिराता है। अनासक्त वृत्ति अर्थात संपूर्ण अनासक्ति, कहीं पर भी बुद्धि ना जाए, कहीं पर भी लगाव ना, उसके लिए जैसे पहले से हमने चिंतन कर रखा है उन चीजों का, जैसे सुकरात का बताया था ना एक बार, उधर क्लास में भी बताया था, सोक्रेटिस के जीवन में, कि वो तो रहता था एकदम साधारण सन्यासी की तरह, पर रोज मार्केट में जाता था, सारी चीजों को घूर घूर के देखते रहता था, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। उसके मित्र उससे पूछते, तुम सन्यासी, तुम फकीर, और फिर भी तुमको, तुम्हारी इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है, तुम क्यों जाते हो ऐसे मार्केट में। वो जाके कहता है, वो कहता है कि मैं ये देखने जाता हूँ कि संसार में कितनी सारी चीजें बिना उनके मैं सुखी हूँ, ये देखने जाता हूँ। इतना बड़ा मॉल, इतना बड़ा सुपर बाजार भरा है, इतनी सारी गाड़ियों के दुकान, इसके दुकान, उसके दुकान, हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इतने सुखी है, तो कितना है ये वृत्ति परिवर्तन हो गई है। देख रहे हैं परंतु चाहिए कुछ भी नहीं अंदर से, अनासक्त, उदासीन, अवदासीन। दो प्रकार की प्रतिज्ञाएं सन्यास मार्ग में ली जाती है, दो प्रतिज्ञाएं, पॉवर्टी एंड चैस्टिटी, गरीबी, और दूसरा ब्रह्मचर्य, कामिनी कांचन। क्योंकि ये जहां आ जाते हैं वहां से माया फिर चालू होती है। इसके लिए सन्यासी जो होता है ना, ये सब चीजों में जाता नहीं है, उसकी आंख नहीं डूबती है धन में और व्यक्ति में। कीर्ति वो आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद फिर वो चालू होती है, जब सिद्धि मिलती है, प्रचार होता है, और फिर कीर्ति आने लगती है। वो कीर्ति तो सबसे बड़ा शत्रु है अध्यात्म का, सबसे ज्यादा जो है वो जिसे माना नहीं जाता है, विकार, विकार की कैटेगरी में नहीं आती है कीर्ति। परंतु कीर्ति जहां आ गई जीवन में, फिर वहां से फिर माया आना चालू हो जाती है।
छोटे बच्चे की तरह प्यारी लगती है।
और हाँ, तो अनासक्त वृत्ति अर्थात और क्या कहेंगे, कहीं पर आंख न डूबे, एकदम न्यारा, उपराम, और लगाव, झुकाव। अनासक्त जो है व्यक्ति और वस्तु दो चीजें आएगी,
लक्ष्य पर ही
फोकस्ड अपने लक्ष्य पर होगा, तो ये छोटी छोटी चीजें उसको बिल्कुल आकर्षित नहीं करेगी अपनी तरफ। अगर लक्ष्य की स्मृति नहीं है पूरी, जैसे ही हम भूलते हैं लक्ष्य को ना, तो फिर ये सारी चीजें में बुद्धि जाती है, ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए। वास्तव में जो भी वस्तु मिलती है ना, तुरंत मिलने के बाद वो व्यर्थ होती है, अभी और दूसरी चाहिए, ये मनुष्य का स्वभाव है। मिलते ही घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, घर मिला, मिलते ही फिर अब वो गया, अभी कुछ और चाहिए। आज बाबा ने मुरली में और एक बात कही है, सेंटर्स की बहनों के लिए बोझ और जिम्मेवारी। बोझ समझते हो कि जिम्मेवारी, जिम्मेवारी बाप की है, तुम्हारी नहीं है। हु आर यू, उसमें भी अच्छा उदाहरण दिया है कि सेंटर्स, सेंटर को चलाना, जिज्ञासु बढ़ाना, जमीन खरीदना, फिर कंस्ट्रक्शन, उसमें वो कंस्ट्रक्शन होते होते 5 साल में एंग्जाइटी, वो फियर, वो डर, वो चिंता, वो संस्कार बन जाता है। तब तक जब तक उसमें प्रवेश करते, गृह प्रवेश जब होता है, तब तक वो सारे संस्कारों के साथ प्रवेश होता है। जैसे व्यक्ति बनाता है, व्यक्ति को घर चाहिए, ठीक है, घर यहाँ है, व्यक्ति इधर है, उसको घर बनाना है। घर बनाने के लिए क्या सोचता है, घर क्यों बनाना है, क्योंकि अभी किराए के मकान में रह रहे, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। घर बनाने की जो प्रोसेस है 5 साल 6 साल 10 साल, उसमें वो इतना बेचैन रहता है कि घर बन गया, परंतु अब बेचैनी के संस्कार बन गए, उसका क्या, वो तो सफेद हो गए तो भी चलेगा, परंतु वो जो संस्कार एक नया धारण हो गया, उसका क्या। इसके लिए तो ये एक बात, और आदर्श शिक्षक, हाँ, जिम्मेवारी का बोझ और उससे मुक्ति का मार्ग, ये हो गया। यह दिन भी ड्रामा में लिपटता जा रहा है, फिर कब आएगा,
ये वाला टाइम भी लिपटता जा रहा है।
अर्थात क्या,
संगम का हर पल,
जैसे ड्रामा एक रील है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें लिपटता जा रहा है, ये दिन भी ड्रामा में लिपटता जा रहा है, फिर कब आएगा, मतलब ये टाइम निकलता जा रहा है हाथ से।
इसमें हम सीख सकते हैं कि जो हमको भी कर लेना चाहिए, हमने किया नहीं है, इसे सीख के आगे कर सकते हैं,
आगे कर सकते हैं, तुरंत करना है वो, अभी और पश्चाताप में समय नहीं गवाना है। बहुत पश्चाताप कर लिया, क्योंकि जो अतीत पश्चाताप कर ले अतीत के लिए, पर अतीत को हम बदल नहीं सकते,
वो
हो चुका है। परंतु अगर हम पश्चाताप करेंगे तो यही फिर भविष्य के लिए अतीत बन रहा है, तो ये लिपटता जा रहा है। यह दिन भी ड्रामा में लिपटता जा रहा है, फिर कब आएगा, फिर नहीं आएगा ये समय, अभी अभी करना है, इस समय को ठीक करना है। एक एक बाबा संकल्प और सेकंड की बात कर रहे हैं, कि हमारा संकल्प, हमारे सेकंड किस में जा रहे हैं, व्यर्थ की बातों में जा रहे हैं, तो वो संस्कार भी बनते जा रहे हैं अंदर ही अंदर। ज्ञान में ही जाए, अगर योग में नहीं जा रहा है तो कम से कम ज्ञान में तो जाए, क्योंकि ज्ञान की इस तरह से चर्चा करने से ज्ञान के संस्कार बन रहे हैं, ज्ञान के भी संस्कार बनते हैं। वो एक प्रश्न। आज्ञाकारी का अर्थ
सबसे पहले हो गया
नहीं, आज्ञाकारी मुरली में क्या बोला आज्ञाकारी के लिए? बच्चे क्या कहते हैं बाबा को?
हाँ जी बाबा,
हाँ जी बाबा, हाजिर बाबा, हम तैयार है बाबा जी, बाबा हाजिर बाबा, बाबा कहते हैं बच्चे। आज्ञाकारी अर्थात क्या? ओबीडियंस,
जो किया और तुरंत कर दिया उसमें क्यों,
जो कहा और कर दिया, क्या क्यों कैसे। एक होता है यस, एक होता है नो। यस शब्द जो है उसमें पॉजिटिव एनर्जी है, नो शब्द कहते ही कोई भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बात को नो जब कहा जाता है ना, तो उसमें एक निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ हमको कहा, हमने कहा नो, तो वहाँ एक निगेटिव एनर्जी ट्रेवल होती है उस आत्मा तक।
जो भी होमवर्क भी ले, माना नहीं करना कोई भी
इसके लिए उसमें एनर्जी है। और
जो कहा जैसा कहा वैसा ही करके दिखाना,
जो कहा जैसा कहा वैसा ही करके दिखाना, उसमें अपनी मन मिक्स नहीं करना। और बाबा ने कहा हमने माना, कैसे करे, कैसे करने आज्ञा करे, दृढ़ता से, ये संकल्प कि मुझे करना है। आज ये भी बोला ना, मुझे करना है, सेवाओं के लिए कहा जयपुर राजस्थान को कि मुझे करना है, दूसरे करे तो नहीं, मुझे देखकर दूसरे करेंगे। छोटे से अर्जुन, इनिशिएटिव मुझे लेना है। और
सच्चाई
सफाई से आज्ञाकारी बनना। और प्रभाकर भाई, आज्ञाकारी के लिए कोई शब्द?
अगर बाबा से प्यार को इमर्ज करेंगे तो प्यार के लिए
सतही होगा, कुछ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। वो प्यार में तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप हो जाती है। और एक बात यहाँ पर कही जिसकी मुझे दूसरी बात याद आ रही, आज कहा ना जयपुर में इंटरनेशनल स्थान है, एक बड़ा बोर्ड हो, उसमें मैटर अच्छा हो, आकर्षण करने वाला हो, सजावट हो, शब्द कम हो, उसमें एड्रेस लिखा हो, फोन नंबर लिखा हो और निमंत्रण भी हो, इतनी बातें है उसमें। पर हम सोच रहे थे कि एक दिन बाबा ने कहा तुम्हारा मस्तक ही बोर्ड बन जाएगा, इसकी सजावट करो, इस पर मैटर लिखो, इस पर कम शब्द हो, इस पर फोन नंबर, इस पर एड्रेस, मस्तक पर, ये मस्तक ही बोर्ड बन जाए। फिर कहा वो ट्रेन में भर के लाओ या बस में भर कर लाओ, यात्री, पंडे और महातीर्थ, हेडक्वार्टर यहाँ पहुंचाओ। अच्छा बस नहीं ला सकते, ट्रेन नहीं ला सकते तो बस, बस नहीं तो एक ही लाओ, वो एक अनेकों की सेवा करेगा। विशेष आत्मा को लाओ, अनेकों का निमित्त बन जाएगा। क्यों नहीं लाते हो? पंडे इतने पंडे है तो कितने तैयार करने चाहिए। और भी कोई पॉइंट आज की मुरली से? और भी कोई प्रश्न
आपसे? कौन सा छूट गया था वो बता दो।
अच्छा वो थर्ड टाइप, सेकंड टाइप वाले कौन से थे माला के?
मान मर्तबे वाले,
मतलब खाने वाले, पाया और खा लिया। खा लिया अर्थात क्या? कमाया अर्थात स्वीकार करना। फल कौन सा? प्रशंसा, महिमा। सेवा की, प्रशंसा हुई और स्वीकार किया, मतलब सीधा थर्ड के सेकंड कैटेगरी में पहुंच गए। प्रशंसा होगी, महिमा होगी, कोई भी अच्छी सेवा करो तो होगी।
बाबा ने उनको सचेत किया गया, इसका त्याग करो तो
पर ये इसी का त्याग करो, त्याग का त्याग, महात्यागी। एक जगह बोला महाभागी, महात्यागी, महाभागी, एक मुरली है, त्याग, त्यागी, सर्वंश त्यागी, महात्यागी, सर्वंश त्यागी, सर्वस्व त्यागी, ऐसी भी एक मुरली है कोई, सर्वंश त्यागी, सर्वस्व त्यागी। तो कौन सा त्याग बोला है यहाँ? प्रशंसा का त्याग। अच्छा दूसरा एक प्रश्न इसमें शायद नहीं आया, त्याग का त्याग किस किस बातों में करना है, किन बातों में? हाँ ये रह गया था इसमें, हो गया वो नहीं। और किस बात? हाँ डाला है, पर वो हमने बोला नहीं अभी ना, दो तीन मिनट बाकी है। और त्याग का त्याग किस बातों में? एक तो प्रशंसा, दूसरा
सेवा करते हैं,
सेवा और सफलता प्राप्त हुई,
बखान जरूर करेंगे।
हाँ उसका वर्णन करना, विस्तार करना, किया और आगे बढ़ा, सेवा की और आगे बढ़ा,
वो बोला ठीक है बस।
हाँ बस एक ही शब्द है, ठीक हुई। कैसी सेवा हुई? ठीक हुई, आगे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ बस अगर कोई ज्यादा पूछे तो मम्मा का सीधा उदाहरण दे देना, खत्म। मतलब हम भी सेफ वो भी चुप। तो हम जो सेवा कर रहे हो कुछ भी नहीं है वास्तव में। सेवाएं तो इतनी बड़ी बड़ी कर ली है सबने, हम क्या कर रहे हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। और त्याग किसका, महिमा सफलता का, सफलता मिली, खजाने प्राप्तियां, ये भी बोला है आज की मुरली। नहीं नहीं त्याग का, त्याग
का त्याग जो
अपने प्रति नहीं यूज करने आवश्यकता से अधिक। ये त्याग किया ये भान भी ना हो, ये त्याग जो है ना, त्याग वास्तव में वो माँ कभी कहती है कि मैंने रात भर मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं तो मैं रात भर जागी रही हूँ, रात भर जागी रही हूँ, उसको प्यार है। प्यार में तो सत्य ही होता है, प्यार में गिनती थोड़ी होती है कि गिनती है, कोई गिनती है क्या कोई।
जैसे बाबा ने मुरली में कहा था कि त्याग का, अगर दुनिया वाले कहते हैं आप बहुत त्यागी हो, ये भी ठीक नहीं है।
हाँ।
आपको मना हमारा भाग्य दिखाई दे।
हाँ वो तो वो भी लोअर स्टेज है वास्तव में, ऊपर की स्टेज है कि भाग्य दिखे, इसका वर्णन भी ना हो कि हमने त्याग किया है कुछ। और त्याग सहज हो, सहज छोड़ना ना पड़े। जैसे झाड़ होता है ना, पत्तियां सूख के नीचे गिर जाती है, वो पत्तियों को भी नहीं पता हम कब गिरे, झाड़ को भी नहीं पता कब गिरे,
दूसरे को पता रहे जो देखता है।
तो हमारा त्याग इतना सहज हो, इतना प्रेम हो इस संसार। जैसे वो उदाहरण बताया था ना, एक सन्यासी के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है एक संसारी गृहस्थी कि आप कितने बड़े त्यागी हो, आपका त्याग तो बहुत बड़ा है, वास्तव में ऐसा त्याग तो कोई नहीं कर सकता। वो सन्यासी उसको कहता है मेरे से बड़े त्यागी तो तुम हो। वो कहता है कैसे, वो कहता है देखो इतनी बड़ी परमात्मा की संपदा, इतना बड़ा परमात्मा प्रेम, उसको छोड़कर तुमने शूद्र संसार को चुना, तुम्हारा त्याग तो मेरे से भी बड़ा है। तो त्याग इज एज इफ अ बाय प्रोडक्ट है, वो कोई हम वो कोई प्रोसेस नहीं है, वो स्वतः ही हो गया है। बड़ा फल, छोटे बच्चे को दो फल दिए गए, बड़ा और छोटा, उसने बड़ा ले लिया, छोटे का त्याग किया क्या, लड्डू छोटा लड्डू छोड़ दिया उसने,
किया तो है ही।
उसको बड़ा मिल गया इसके लिए वो अपने आप छूट गया। अगर वो खाली उसको वैसे ही कहा छोटा ही है उसके हाथ में और उसको हम छीने तो फिर उसको दुख है, पर बड़ा दे दो तो ये छूट गया, वो भूल जाएगा फिर। उसको बड़ा खिलौना मिल गया तो छोटा खिलौना भूल जाता
है।
तो मेरे ख्याल से सब ऑलमोस्ट सारी पॉइंट्स हो गए, आपने काफी चिंतन करके लिखी है इसमें।
बहुत ज्यादा लिख दिया।
हां
आप तो ताना नहीं जा सकते, जब सेवा करेंगे तब ताना जा सकते,
मेहनत करो,
सेवा करो तो खाना खाओ।
हां उसके सिवा नहीं ना। दूसरा एक है अपना समय स्वयं के आराम के प्रति नहीं, ये तो बहुत पावरफुल पॉइंट है। आप स्वयं का अपना समय स्वयं के आराम के लिए नहीं, वास्तव में ये जो दान है सबसे बड़ा दान है
समय।
किसी के लिए समय देना बहुत मुश्किल भी है, ये दूसरों को समय देना ये सबसे मुश्किल काम है, बाकी तो सब दे सकते हैं। समय देना, क्लास दे दो, ये दे दो, ईमेल कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो सब तो बहुत आसान है तुरंत, पर कोई आए और उसको समय दो ये बहुत बड़ा काम है।